इल्म का मुझको शौफ अता कर खुदा, इल्म नाफे मिले अजपाए उलमा। इल्म का मुझको शौफ अता कर खुदा।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का जिक्र करना बहुत बड़ी इबादत और इंसान के लिए बहुत बड़ी सआदत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने जिक्र का हुक्म बहुत से मकामात पर दिया है। एक जगह इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनु ज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालों अल्लाह का बड़ी कसरत के साथ जिक्र करो। एक जगह फरमाया, वज़्कुरुल्लाहा कसीरा लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। अल्लाह ताला के जिक्र के लिए लफ्ज़े जिक्र भी कुरान में है और लफ्ज़े तस्बीह और हम्द भी कुरान में है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर, तो ऐ हबीब अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान किया करो और उससे इस्तिग़फ़ार करो। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को तस्बीह करने का और हम्द करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। अच्छा, इसी तरह और भी कुरान पाक में बहुत से मकामात पर है, वसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, और सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह करो, अल्लाह की पाकी बयान करो। तो ये अल्लाह ताला का जिक्र करना, अल्लाह ताला की तस्बीह करना, अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ना, ये अल्लाह ताला को महबूब भी है, खुदा का हुक्म भी है। अब ये जिक्र करना ये कई तरह होता है। जिक्र ज़बान के साथ भी होता है, जैसे हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, सुबहानल्लाह पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हैं। इसी तरह जिक्र दिल से भी होता है कि बंदा अपने दिल में अल्लाह ताला की कुदरतों के बारे में सोचता है, अल्लाह ताला की कायनात में गौर करता है, जिससे अल्लाह ताला की अजमत उसके दिल में और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह जिक्र करना ये आज़ा के साथ भी होता है। आज़ा से जिक्र ये है कि बंदा अपने आज़ा को, अपने जिस्म के आज़ा को अल्लाह की बंदगी और इबादत और इताअत के कामों में लगाए। इसी तरह बंदा अगर अपने आज़ा से मखलूक को नफ़ा पहुँचाता है और अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, तो ये भी अल्लाह के जिक्र की सूरत है। अब यहाँ पर ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि दीन की जो ताबीरात हैं उनको बदल दिया जाए। जैसे दीन ने, कुरान ने जो फरमाया है वो अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ने के बारे में बाकायदा फरमाया, उसमें बाकायदा तस्बीह का तस्किरा है, सुबहानल्लाह का तस्किरा है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम कौन सी तस्बीह करते थे, सैकड़ों या बीसियों तस्बीहात अहादीस तैयबा में मौजूद हैं। सहाबा किराम और सहाबियात से भी बहुत सी तस्बीहात मरवी हैं, उनके मामूलात में शामिल थी। तो अब अगर कोई बंदा ज़बान से तस्बीहात पढ़ता है तो वो सबसे पहले अल्लाह ताला के इस हुक्म पे और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करता है। लेकिन बाज़ लोगों का मसला ये होता है कि बाज़ औक़ात किसी लफ्ज़ का कोई ऐसा मफ़हूम किसी राह चलते ने बता दिया, तो उसको लेकर जो अल्लाह रसूल का बयान करदा मफ़हूम है उसके ऊपर भी उसे तरजीह दे देते हैं। जैसे बाज़ लोग कहते हैं कि जनाब तस्बीह तो वो है कि बंदा बस मखलूक के लिए कुछ कर जाए और कोई ऐसा काम कर जाए कि लोग देखें तो कहें सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ऐसा काम करना अपनी जगह अच्छा होगा, उसकी इफादियत है, तो उसके जो है वो भला काम होने में, खैर का काम होने में कोई शक नहीं है। लेकिन आप कुरान की आयतें बदल दें, कुरान की आयतों का मफहूम बदल दें, قرآن کی آیتیں نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے جو اس کا مفہوم ثابت ہے، جو صحابہ کے طریقے سے ثابت ہے، اس سارے کا سارا آپ بالکل کھڑے لائن لگا دیں اور آپ بولے کہ نہیں جناب بس تسبیح تو یہ والی ہوتی ہے اور اس کو تسبیح کہتے ہیں، تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ اگر دین کی تعبیرات اسی طرح بدلنا شروع کر دی اور قرآن کے مفاہیم کو اسی طرح بدلنا شروع کر دیا، تو پھر جو پچھلی قومیں اپنے دین میں اور اپنی کتابوں میں تحریف کرتی تھیں وہ تو لفظی طور پہ بھی تحریف کر دیتی تھیں، لیکن یہ معنوی اعتبار سے تحریف ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس طرح کے طرز عمل سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی تسبیح پڑھنے والا، تسبیح کرنے والا اور ذکر کرنے والا بندہ بنائے۔ اب آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔
ایک اسلام بھائی کا سوال ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی عہدہ اور منصب ہو اور اس سے اس وقت غلطی ہو جائے تو وہ اس وقت توبہ کرے تو ٹھیک، اور منصب جانے کے بعد اگر وہ توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیا یہ درست ہے؟
دیکھیں، اپنی طرف سے یہ فتویٰ لگا دینا کہ بندے کے پاس جب منصب تھا اور اس نے غلطی کی تو اس وقت کی تو اس کی توبہ قبول ہے اور بعد میں توبہ قبول نہیں ہے، یہ خدا کی رحمت کا دروازہ بند کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑا واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ توبہ جو قبول نہیں ہے اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ حالت کفر میں مر جائے، تو حالت کفر میں ہی ہے اور اسی حالت میں موت آ گئی تو اس کی تو توبہ ہوئی نہیں، کہ جب اس نے کفر سے توبہ نہیں کی تو اس کی پھر کون سی توبہ کا اعتبار۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ ان لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہے کہ جو ساری زندگی گناہ کرتے رہیں حتیٰ کہ ان کی موت کا وقت آ جائے، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، حتیٰ کہ موت حاضر ہو جائے تو اب کہے تبت الان، میں نے اب توبہ کی، تو اب جو بندہ توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ موت کے حضور سے کیا مراد ہے، اس کی صراحت احادیث میں صحابہ کرام سے اور مفسرین سے ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب موت کا فرشتہ آ جائے اور غیب کے معاملے اس کے سامنے کھل جائیں۔ جب غیب کھل گیا تو اب توبہ نہیں، لیکن اس سے پہلے پہلے اگر بندہ موت سے ایک منٹ پہلے بھی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا رحم فرمانے والا ہے، وہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو جب خدا توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنا اصول بیان کر دیا، تو اب اپنی طرف سے یہ قید لگانا کہ توبہ تب قبول ہے کہ جس زمانے میں گناہ کیا اسی زمانے میں توبہ کرے، جوانی کی تو جوانی کے گناہوں سے توبہ جوانی میں ہوگی بڑھاپے میں نہیں، معاذ اللہ۔ اگر یہ بات ہے تو توبہ تو خدا نے قبول کرنی ہے، اور خدا نے تو فرما دیا کہ موت کے ظاہر ہو جانے تک میں توبہ قبول کرتا ہوں، تو اب خدا فرما رہا ہے میں توبہ قبول کرتا ہوں، لیکن یہاں لوگ کہہ رہے کہ نہیں جناب وہ توبہ منصب والی توبہ منصب کے زمانے میں ہوگی، جوانی کی توبہ جوانی کے زمانے میں ہوگی۔ تو یہ اللہ رسول کے صراحتوں اور اللہ رسول کے واضح فرامین کے برخلاف ایک طریقہ اپنانے والی بات ہے، لہٰذا اس طرح کی بات کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔
ملک سیف الرحمان ہے، پوچھ رہے ہیں کہ ایک شعر ہے، یاد ماضی آزاد ہے یارا چھین لے مجھ سے میرا حافظہ، کیا یہ شعر کہنا درست ہے، گناہ تو نہیں؟
یہ شعر جو ہے وہ اپنے مفہوم کے، جس کس مفہوم کے اندر اس کو پڑھا گیا اس کے اوپر دار و مدار ہے۔ اس کا اچھا مفہوم بھی ہے کہ ماضی کی بہت سی ایسی یادیں ہوتی ہیں جو انسان کو بڑی تکلیف دیتی ہیں، جیسے ماضی کے اندر کسی آدمی کے ساتھ کوئی ایسا سانحہ ہوا، کوئی اس کو ایسا صدمہ ہوا کہ وہ جب بھی اسے یاد آتا ہے تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کا چھوٹا بچہ فوت ہو گیا، یا کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، یا کسی کا جوان بھائی فوت ہو گیا، یا کسی کو اپنے ماں باپ سے بے تحاشا محبت تھی، اب ان میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا، یا ایک آدمی کا کروڑوں اربوں کا کاروبار تھا اور وہ تباہ ہو گیا اور یہ آدمی بالکل کنگلا ہو گیا، या एक आदमी को किसी मौके पे हज़ारों के सामने जलील व रुसवा कर दिया, तो अब वो तलख यादें होती हैं बंदे के जहन में, तो आदमी कहता है कि या अल्लाह बस वो तलख यादें जो है ना मेरे दिल से निकाल दें। अब उस मफहूम में अगर कोई कहता है कि याद माजी अजाब है या रब छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा, तो उस मफहूम के अंदर ये ठीक है और उसमें पढ़ने में हरज नहीं है, लेकिन वैसे जो है ना वो थोड़ा सा सोच समझ के पढ़ना चाहिए। वाकई अगर हाफिज़ा छिन गया और हाफिज़ा वापस अल्लाह ताला ने ले लिया तो कहीं दूसरे अतबार से आजमाइश ना हो जाए, लेकिन बहरहाल सही मफहूम के अतबार से ये शेर दुरुस्त है, इसमें कोई हरज नहीं है।
नमाज़े जनाज़ा के वुज़ू के साथ क्या दूसरी नमाज पढ़ सकते हैं?
नमाज़े जनाज़ा के वुज़ू से कोई भी दूसरी नमाज पढ़ सकते हैं, और जब वुज़ू कर लिया तो वुज़ू तो हो गया, तहारत हासिल हो गई, और उस तहारत के साथ कोई भी नमाज पढ़े, तिलावत कुरान पाक को छुएं, तो सब जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है।
तांबे के मटके या बोतल से पानी पीना कैसा?
तांबे के मटके या बोतल से पानी पीना जायज़ है और इसमें हरज नहीं है। बाज़ उलमा ने ये तहरीर फरमाया है, बहार शरीयत के अंदर भी है, कि सोने चांदी के अलावा किसी और धात के बर्तन में जो पानी धूप के अंदर गर्म हो जाए, तो जब तक वो पानी गर्म है वो पानी ना पिया जाए ना उसे वुजू किया जाए, कि इससे बर्स का बदन के ऊपर सफ़ेद दाग जो पड़ जाते हैं ना, बड़े बुरे से लगते हैं, तो उसके पड़ जाने का अंदेशा है। लेकिन ये इस एतबार से, एक तिब्बी एतबार से एक बात समझाई गई है, शरई एतबार से तांबे के बर्तन में पानी पीना और या उसके बर्तन से गुस्ल करना या उसका इस्तेमाल करना जायज़ है।
दाढ़ी का खत बनवाना कैसा है?
दाढ़ी का खत बनवाने के दो माना होते हैं। एक तो ये है कि जो सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी है उतने का लिहाज करते हुए जो बकिया है उसे तरशवा दिया जाए, कटवा दिया जाए। जैसे एक मुट्ठी दाढ़ी रखना वाजिब है, अब एक मुट्ठी दाढ़ी को यूं पकड़ा, इसके नीचे की जो दाढ़ी है इसे काट लिया, इसी तरह ये जो यहाँ गले के ऊपर बाल हैं इनको भी साफ कर लिया, तो ये ठीक है, इसमें कोई हरज नहीं है, ये तो बिल्कुल जो है वो सुन्नत के मुताबिक अमल हो जाएगा। और एक खत बनाना इसे कहते हैं कि बिल्कुल ही जो दाढ़ी की असल मकदार है, वाजिब मकदार, तो उसी के अंदर जो है वो गड़बड़ कर दी और बड़े स्टाइलिश अंदाज के अंदर इधर से उधर से जनाब उसको तराश खराश करके बना लिया, तो अगर ये मुराद खत बनाने से तो फिर तरके वाजिब है, तरके वाजिब है और गुना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाढ़ियाँ बढ़ाओ और मूछें पस्त करो और यहूदियों जैसी सूरत मत बनाओ। तो दाढ़ी रखने का हुक्म, दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में नहीं बल्कि बीसियों हदीस के अंदर इसका हुक्म दिया है।
इस्लामी बहन का सवाल है कि अगर किसी के पास मकान से लेकर कपड़ों तक हर चीज हराम की हो, अब वो तौबा भी करना चाहता है, नमाज पढ़ना चाहता है, लेकिन मौलाना साहब से सुना है कि जब तक वो माल वापिस नहीं करेगा तो उसकी तौबा कबूल नहीं होगी, आप क्या फरमाते हैं?
देखिए, नमाज तो अपनी जगह फ़र्ज़ ही है और नमाज तो उसको अदा करनी ही है। अब अगर वाकयातन अल्लाह ना करे कि किसी की ऐसी सूरत हो कि उसके पास जो मकान है वो भी हराम का है, जो लिबास है वो भी हराम का है, अब ऐसी सूरत में क्या करें? तो देखें, ये जो जब जुमला कहा जाता है ना कि जगह भी मकान भी हराम का है, लिबास भी हराम का है, तो इसका बड़ा वसी मफहूम बनता है। इससे क्या मुराद है? क्या किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करके मकान बनाया है या किसी के मकान पर कब्ज़ा किया हुआ है और उसमें रहता है? तो ये सूरत है कि गसब की ज़मीन और गसब का मकान करार पाए या कुछ और मफहूम है। दूसरे नंबर पे जो लिबास कहा जा रहा है कि भाई ये हराम का लिबास है, तो इससे क्या मुराद है? क्या लिबास चोरी का है, डकैती का है, या ये किसी से छीना हुआ लिबास है, क्या? अगर तो ये सूरत है जो अभी मैंने बयान की है, तो इसके अंदर तो उस जगह में नमाज पढ़ना भी नाजायज़ गुनाह है और उस लिबास के अंदर नमाज पढ़ना भी मकरूह तहरीमी है। तो अब ऐसी सूरत में जो हल है वो तो ये है कि उस मकान में नमाज नहीं पढ़ेगा, किसी और जगह नमाज पढ़े। और लिबास का जहाँ तक ताल्लुक है तो लिबास में फिर ये है कि किसी से कर्ज लेकर लिबास खरीदे और उस लिबास के अंदर फिर नमाज अदा करे, ताकि उस हराम वाले लिबास के अंदर नमाज ना हो, क्योंकि उसमें मकरूह तहरीमी या वाजिबुल इयादा होगी। ये तो है बड़ी स्पेसिफिक सूरत। दूसरा ये होता है कि एक आदमी कारोबार में झूठ बोलता है या उसका कारोबार कानूनी एतबार से दुरुस्त नहीं है, तो बाज़ वक़्त उसके बारे में भी इस तरह का लफ्ज़ बोल दिया जाता है। अगर ऐसी सूरत हो तो उसके ऊपर वो अहकाम नहीं होते, वो चीज़ नाजायज़ की है, गुनाह किया तो वो अपनी जगह होगा, लेकिन फिर वो जो नमाज के ऊपर अहकाम है वो यहाँ पर लागू नहीं होंगे। तो ये मसला बेसिकली ऐसा है कि जिसमें दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से किसी सुन्नी मुफ्ती से बाकायदा राबता करके उसे तफसील बताकर इस मसले का जवाब लिया जाए।
ज़खीराअंदोज़ी के हवाले से क्या फरमाती
है? ज़खीराअंदोज़ी कहते हैं कि जिस वक्त अनाज की किल्लत हो और लोग अनाज की तरफ मोहताज हों, अनाज से मुराद है जैसे ये गंदम है, जैसे मकई है, ये जो चीज़ें हैं, तो ये आटा हो गया, तो जिस वक्त इन चीज़ों की किल्लत है उस वक्त कोई बंदा ये अनाज की चीज़ें अपने पास ज़खीरा कर ले, स्टॉक कर ले, होल्ड कर ले, ताकि और महंगा हो तो फिर मैं बेचूंगा, इसे ज़खीरा अंदोज़ी कहते हैं। ये हराम है और ये गुनाहे कबीरा है। अल्लाह की मखलूक के ऊपर ये तंगी करना है, और जो खुदा की मखलूक पे तंगी करता है अल्लाह ताला उस पे तंगी कर देता है, और ये बड़ा अहम मसला है, इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की हाजत है। नॉर्मली भी किसी भी शय को इस तरह स्टॉक ना किया जाए कि जिससे मखलूक तकलीफ़ में आ जाए, लेकिन अनाज के मसले के अंदर तो बितसरी अहादीस में और मुज्तहिदीन किराम ने फरमाया है कि ये सख्त मामला है, और जो अहादीस में ज़खीरा अंदोज़ी को हराम करार दिया है उस ज़खीरा अंदोज़ी से बतौर ख़ास अनाज, गल्ला, आटा, इन चीज़ों की ज़खीरा अंदोज़ी है। और ज़खीरा अंदोज़ी क्या है कि किल्लत के ज़माने में शय को इस तरह अपने गोदामों में, इस तरह अपने पास महफूज कर लिया जाए कि भी और महंगा होगा तो फिर मैं बेचूंगा, ये नाजायज़ है, ये हराम है।
कारी इमरान पूछ रहे हैं कि फजर की सुन्नतें रह जाए तो अब क्या करें?
फजर की सुन्नतें रह जाने की सूरतें होती हैं। देखिए, एक ये है, एक आदमी मस्जिद में आया और आगे जमात हो रही है, तो अगर तो इस बंदे को पता है कि मैं सुन्नतें पढ़ के अगर जमात में शिरकत करूं तो इमाम के सलाम फेरने से पहले पहले मैं जमात में शरीक हो जाऊंगा, तो ऐसी सूरत में उसे चाहिए कि उस जमात वाली जगह से हटकर सुन्नतें अदा करें और फिर जमात में शरीक हो जाए। और अगर मस्जिद छोटी सी है कि वहाँ पर जुदा गाना जगह ही नहीं है, और ये भी नहीं हो सकता कि ये घर पढ़ के आ जाए, या ये सूरत, और या ये है कि इसको ये पता है कि सुन्नतें पढ़ने में लगेगा तो जमात ही निकल जाएगी, इमाम सलाम फेर देगा, तो फिर ऐसी सूरत में ये सुन्नतें ना पढ़े बल्कि जमात में शिरकत कर ले। और अब ये जो सुन्नतें हैं इन्हें पढ़ना चाहे तो नंबर एक ये याद रखे कि फ़र्ज़ों के बाद हो तुलुए आफ्ताब से पहले ये सुन्नतें नहीं पढ़ सकता, इस वक्त पढ़ना गुनाह है, और तुलुए आफ्ताब के बाद जब वक्त मकरूह ख़त्म हो जाए तब से लेकर जो जोहर का, जो जवाल का वक्त है, जवाल का वक्त शुरू होता है जिसमें नमाज मकरूह हो जाती है, उससे पहले का जो टाइम बनता है इस टाइम के अंदर फिर वो ये दो सुन्नतें अदा कर ले, तो ये इसका तरीक़ाकार है। और अगर बिलफर्ज उस वक्त में भी अदा नहीं किया और अब जवाल का वक्त ही शुरू हो गया और अब मकरूह वक्त शुरू हो गया, फिर उसके बाद जोहर का वक्त शुरू हो गया, तो फिर अब ये सुन्नतें नहीं पड़ेगा। गुटके और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं इनके बारे में ये मसला हमेशा याद रखें कि देखिए, एक चीज़ ये होती है कि उसे शरीयत ने हराम करार दिया, जैसे शराब है या जैसे हराम गोश्त है, इसे शरीयत ने हराम करार दिया, लिहाजा जिसे शरीयत ने हराम करार दिया है उसे बेचना ये हराम, नंबर एक। नंबर दो ये है कि जिस शय से लोगों को फौरी तौर पे नुकसान होता है और ये पता है कि ये नुकसान के लिए इस्तेमाल करेगा तो ऐसी चीज़ का बेचना भी दुरुस्त नहीं होता। तीसरी सूरत ये है कि कुरान और हदीस ने तो उसको हराम ही करार दिया लेकिन मुल्की कानून के अंदर उसके बेचने को मना कर दिया गया, जैसे यही गुटखा है, छालिया है, या इससे मिलती जुलती और चीज़ें हो सकती हैं। अब ये कोई आयत हदीस में तो आया नहीं है कि इसका खाना हराम है या नाजायज़ है या मना है, लिहाजा अब शरई मामला जो है ये तो गया एक तरफ, अब दूसरी तरफ आ गया कानून का मामला। तो कानून का मामला ये होता है कि देखिए, कानून जो बनता है वो हमारे भले के लिए बनता है। किसी शय से कोई बड़ा ज़रर हो रहा होता है, कोई नुकसान हो रहा था, तो इसीलिए कानून बनाया जाता है। तो जो चीज़ें कानून की वजह से मना कर दी जाएं, उनसे भी लाजमी तौर पे बचना चाहिए। क्योंकि जब बंदा उसकी खिलाफ वर्जी करता है और उसके बाद या तो पकड़ा जाए तो रिश्वत देगा या जिल्लत उठाएगा, तो जिल्लत उठाना ये भी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है, और अपने आप को रिश्वत देने की तरफ ले जाना ये भी उसके लिए जायज़ नहीं है। तो लिहाजा कानून के अंदर जब ये चीज़ें मना हैं तो फिर इससे बचना ही होगा।
मोहम्मद सिद्दीक भाई पूछ रहे हैं कि क्या गैर मुस्लिम को उसकी बीमारी के इलाज के लिए सदका नाफला दिया जा सकता है?
गैर मुस्लिम की ऐसी तकलीफ दे बीमारी कि जिसकी वजह से वो अजियत में मुब्तला है, उससे उसे नजात दिलाने के लिए उसे उसकी मदद की जा सकती है। और उसमें भी बहुत अच्छा है कि इस चीज़ को उसकी तकलीफ के इजाले का भी ज़रिया बनाएं, लेकिन इस्लाम का अच्छा मैसेज देने का भी उसको ज़रिया बनाएं। तो दावत इस्लाम भी उसके अंदर आ जाए और एक इंसान की तकलीफ का दूर करना भी उसके अंदर आ जाए।
आतिफ भाई पूछ रहे हैं कि क्या जोहर और असर की नमाज में मुक्तदी किरात कर सकता है?
जोहर और असर की नमाज हो या इसके अलावा कोई भी नमाज हो, मुक्तदी को किरात करने की असलन इजाज़त नहीं, क्योंकि नमाज में किरात तो इमाम ने करनी होती है। खा जहरी नमाज है, मगरिब इशा या सिर्री किरात वाली नमाज है, जैसे जोहर और असर, सब के अंदर इमाम ने किरात करनी होती है, मुक्तदी ने किरात नहीं करनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा क़रा अल इमाम फअनसितु, जब इमाम किरात करे तो तुम खामोश रहो। तो लिहाजा मुक्तदियों को मुतलकन खामोश रहने का हुक्म है।
मोहम्मद साले भाई पूछ रहे हैं कि सहाब की एक से ज्यादा अंगूठी पहनकर नमाज पढ़ना
है। औरत अगर धात की एक से ज्यादा अंगूठी पहनती है तो उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन मर्द अगर पहनता है तो वो भले एक पहने या दस पहने, उसके लिए दोनों ही नाजायज है। मर्द को सिर्फ चांदी की एक अंगूठी जो 4.5 माचे से कम वजन की है, एक नगीने वाली, उसकी इजाजत है। वरना मर्द भी अगर उसके अलावा किसी और धात की पहनेगा तो उसके लिए एक भी जायज नहीं है।
पेशवा सदका करते वक्त ये कहना कि ये सारे आलम इस्लाम की तरफ से है, इसमें कोई हर्ज तो नहीं?
सारे आलम इस्लाम की तरफ से कहने का मफहूम ज़हन में होना चाहिए। अगर तो ये मफहूम है कि इसका सवाब जो है वो सबको मिले तो ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक आदमी को नेकी का काम करे और उसका सवाब सारी उम्मत को पहुंचाए तो ठीक है। एक आदमी सदका करे और कहे कि इसका सवाब सारी उम्मत को मिले, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के सारे मुसलमानों को मिले, तो ठीक है। आलम इस्लाम से भी अगर इसी तरह की मुराद है तो ठीक है, और अगर कुछ और मुराद है तो फिर मुराद पता चले तो उसके मुताबिक जवाब अर्ज कर सकता हूँ।
एक सवाल यह है कि क्या तरक्की मजहब से बेजारी से ही होगी?
देखिए, जब तक मुसलमान इस्लाम पर अमल करते रहे, तरक्की भी करते रहे। सहाबाए किराम का ज़माना देख लें, सहाबाए किराम के बाद खुलफा का ज़माना देख लें, बनू उमैया का ज़माना था, बनू अब्बास का ज़माना था, ये सारे ज़माने वो हैं कि जब इस्लामी ममालिक में सुप्रीम ताकत था। जब तक इस्लाम पे अमल होता रहा, मुसलमान तरक्की भी करते रहे, और जब इस्लाम पे अमल कम होता गया तो मुसलमानों की तरक्की भी कम होती गई। तो आज के ज़माने में इस्लाम के अहकाम पे अमल कम है तो मुसलमानों की तरक्की भी कम है। तो ये तो बड़ी वाजह सी चीज़ है कि जब तक इस्लाम पे अमल हुआ तरक्की हुई, जब इस्लाम को छोड़ा तो तरक्की भी छूट गई। तो जो मुशाहदा है 1400 साल का, वो तो ये है जो मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दिया है। बाकी वो जो दीन बेजार लोग बोलते हैं, नहीं जी इस्लाम और तरक्की एक साथ नहीं चल सकते, तो ये तो फिर अब उनकी ऐसी एक फजूल सी बात है।
शहबाज भाई पूछ रहे हैं कि क्या नामों का असर शख्सियत पर होता है?
नामों का असर शख्सियत पर होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई नामों को तब्दील फरमाया, और एक शख्स थे जिनका नाम हज़न था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनका नाम तब्दील फरमाया तो उन्होंने तब्दील किया नहीं, तो तब्दील नहीं किया तो उनके ख़ानदान के अंदर गम जो है वो मुसलसल पाया जाता रहा, क्योंकि हुज़न का माना गम होता है। तो नाम का शख्सियत पे असर होता है।
आतिफ शेख अकाली पूछ रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस के लिए चेहरे पर मारना कैसा?
सेल्फ डिफेंस के लिए चेहरे पे मारने का मतलब तो ये बनता है कि भाई आप पे किसी ने हमला कर दिया है और आप अपने आप को बचाने के लिए जैसे तैसे भी उसको मारते हैं। अब मुक्का मारा, थप्पड़ मारा, गोंसा मारा, लात मारी, तो अब वो तो उसे कहीं भी लगेगी। तो जो सेल्फ डिफेंस के अंदर किया जा रहा है वो तो ठीक है, उसमें तो हर्ज नहीं है, लेकिन ये कि इस तरह का मुतलक जो है ना वो बात नहीं होती। अब इससे क्या, इसकी तफसील क्या है, थोड़ा सा उसका पता चला ना, पता चले कि बाद में बॉक्सिंग ही खेल लें, अब बॉक्सिंग खेल रहे हैं, मुँह में मुक्के मारे जा रहे हैं, तो वो जो है वो गलत है। मुंह पे यूं मारना जो है ये जायज़ नहीं है। तो ये जो खेलों के अंदर किया जाता है ना कि बॉक्सिंग के अंदर जनाब वो दे मार साढ़े चार, तो वो मार रहे होते हैं एक दूसरे को, इसकी शरण इजाजत नहीं है।
गुलाम मुर्तजा डोगर पूछ रहे हैं कि नमाज की पाबंदी के लिए कोई वजीफा या नौकरी है?
वैसे तो आसान तरीका यह है कि एक मरतबा किसी कब्र में जाके बैठ जाएं और थोड़ी देर के बाद वहाँ से निकलें तो पता चल जाएगा कि नमाज पढ़नी या नहीं पढ़नी। बाकी यह है कि दुआ भी करनी चाहिए, नमाजियों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए, और इसके साथ नमाज के फजाइल पढ़ने चाहिए। नमाज के फजाइल और बुजुर्गाने दीन का शौक़ इबादत अगर ये पढ़ते रहें तो इससे फिर नमाज का इबादत का शौक़ पैदा होता है। दावत इस्लामी के हफ्तावार जो इज्तिमा होते हैं इसमें शिरकत करें, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल पहली मरतबा में ही या चंद एक मरतबा के बाद इंशाल्लाह नमाज का शौक़ पैदा हो जाएगा। अमीर अहले सुन्नत की बहुत खूबसूरत किताब है फैज़ान नमाज, उसका मुताला अपनी आदत में शामिल कर लें तो इंशाल्लाह नमाज का बड़ा जज्बा पैदा होगा।
मोहम्मद इस्माइल पूछ रहे हैं कि मुअज्जिन जब अजान देता है तो क्या उसको जवाब देने वाले के बराबर जवाब मिलता है या नहीं?
मुअज्जिन अजान देता है तो उसको अपनी उसकी फजीलत है, और जो जवाब देने वाला है उसकी अपनी फजीलत है। जवाब देने वाले के लिए ये है कि उसे हर कलमे का जवाब देने पर 2 लाख नेकियां मिलती, मर्द को 2 लाख नेकियां मिलती, औरत को 1 लाख नेकी मिलती। वजह यह है कि मर्द ने जवाब देना होता है तो मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़नी होती है, औरत ने सिर्फ जवाब देना, मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़नी। तो मर्द को 2 लाख एक एक कलमे पे और औरत को एक एक लाख नेकी मिलती है। तो ये जवाब देने वाले के लिए है। जो मुअज्जिन है उसका सवाब जो है वो जुदा है, और उसके जरिए बकिया को इतना सवाब मिल रहा है तो अल्लाह ताला की रहमत से जो उसका सवाब है वो इंशाल्लाह ज्यादा ही होगा।
मोहम्मद साले पूछ रहे हैं कि बैंक से सूदी रकम अगर अकाउंट में आ जाए तो उसको कहाँ खर्च करें?
बैंक से सूदी रकम अगर आ जाए तो अगर तो उसको वापस कर सकते हैं बैंक ही को तो कर दें, वरना फिर उसको लेके किसी शरई फकीर को दे दें बगैर सवाब की नीयत के। यानी उसमें ये नीयत ना करे कि मैं सदका दे रहा हूँ, क्योंकि सदका हलाल माल से दिया जाता है, हराम से नहीं दिया जाता, और सूद की जो रकम है ये हराम है। तो लिहाजा ये जो देनी है ये उससे जान छुड़ाने के लिए देनी है, सदके के सवाब से नहीं देनी। हाँ, हुक्म शरई ये है कि फकीर को दे दी जाए, इस हुक्म शरई पर अमल का जो सवाब है उसकी नीयत कर सकते हैं।
फीस लेकर कुरान मजीद पढ़ाने पर सवाब मिलेगा?
फीस लेकर कुरान मजीद पढ़ाने पर सवाब का दारोमदार नीयत पर है। अगर किसी की नीयत ये है कि फीस मैं इसलिए लेता हूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी भी गुजारनी है, मेरे अखराजात भी हैं, मेरा घर भी चलाना है, तो इसलिए फीस लेता हूँ और कुरान में अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ाता हूँ, तो उसको बिल्कुल सवाब मिलेगा। कुरान पढ़ाने का भी सवाब मिलेगा और उसके साथ रिस्क के हलाल कमाने का भी सवाब मिलेगा। और अगर किसी की सवाब की नीयत नहीं है तो फिर बारह उसको सवाब नहीं मिलेगा। तो ये इसमें तफसील है।
मोहम्मद इस्माइल पूछ रहे हैं कि क्या इमाम बैठकर नमाज पढ़ा सकता है?
नफल नमाज अगर बैठ के पढ़ा रहा फिर तो ठीक है, फिर तो पढ़ा सकता है, और अगर फ़र्ज़ नमाज या वाजिब जैसे वितर है उसकी भी जमात होती है, या ईदैन की नमाज है उसकी भी जमात होती है, अगर वो बैठ के पढ़ाता है तो अब इसका दारोमदार इमाम की हालत पे है कि क्या इमाम जो है वो उस पर शरई एतबार से क़याम ज़रूरी है, क्योंकि फ़र्ज़ और वाजिब जो होते हैं इसमें क़याम फ़र्ज़ होता है। अब अगर क़याम फ़र्ज़ है और इमाम क़याम और क़याम पर कादिर है, यानी सजदे पर कादिर और क़याम पर कादिर है, तो अब ऐसी सूरत के अंदर अगर वो बैठ के नमाज़ पढ़ाता है तो फिर तो उसके पीछे नमाज नहीं होगी। लेकिन अगर इमाम सजदा तो ठीक कर रहा है, खड़े होने पर असलन कादिर ही नहीं है और अब वो बैठ के नमाज़ पढ़ा रहा है, तो फिर बैठे हुए इमाम के पीछे खड़ों की नमाज हो जाएगी। ग़ज़वा उहुद के मौके पे गालिबन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह नमाज अदा फरमाई थी।
कमरुज़्ज़मान पूछ रहे हैं कि क्या लफ्ज़े खुदा अल्लाह अज़्ज़ा वजल का ज़ाती नाम है?
लफ्ज़े खुदा अल्लाह ताला के लिए बोला जाता है और अल्लाह ताला के लिए बोलना जायज़ है, और ये ज़ाती नाम इस एतबार से है कि इसका माना किसी वस्फ पर दलालत नहीं करता, بلکہ ذات پہ دلالت کرتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو ذاتی کہہ سکتے ہیں، ورنہ اس میں ذات لفظ اللہ ہے۔
کیا اجتماعی دعا قرآن و سنت سے ثابت ہے؟
اجتماعی دعا بالکل قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ قرآن سے تو یوں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں پر بھی دعا کا فرمایا ہے، وہاں کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ تنہا دعا مانگنا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی قید کے اور بغیر تنہائی کی شرط لگائے دعا کا فرمایا ہے، تو جیسے چاہیں دعا کر لیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ، پوشیدہ طور پہ۔ تو یہاں پر کوئی نہیں ہے کہ بھئی تنہا تنہا مانگنی ہے، اکٹھے نہیں مانگنی، ٹھیک ہے، ایک بات یہ۔ دوسرا یہ ہے، قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے کہ آپ نے فرعون اور فرعونیوں کے ہلاکت اور بربادی کی دعا کی، اور وہاں پر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں نے دعا کی، اور اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے، تو یہ اجتماعی دعا ہو گئی۔ اچھا، یہ تو ہے کہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ کسی کو شک و شبہ رہ جائے۔ میں آپ کو ایک ایسی دلیل دیتا ہوں کہ جو آپ کو پوری زندگی یاد رہے گی، وہ یہ ہے کہ جب نماز کے اندر امام کے پیچھے ہم کھڑے ہوتے ہیں اور امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، جب سورہ فاتحہ ختم کرتا ہے تو مقتدی کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ یہ آمین کس بات پہ کہہ رہے ہوتے ہیں؟ دعا پہ، کیونکہ امام کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، مقتدی کہتے ہیں آمین۔ تو اس سے بڑھ کر اجتماعی دعا کی کوئی اور دلیل ہو سکتی؟ کہ امام دعا مانگ رہا ہے اور یہ سارے کے سارے مقتدی اس امام کے پیچھے کھڑے آمین کہہ رہے ہیں، تو لہذا اجتماعی دعا جو ہے وہ تو سرکار کی ہر نماز سے ہی ثابت ہوگی۔
جمعے کے خطبے کے دوران جو وقفہ ہوتا ہے، اس میں کیا دعا مانگ سکتے ہیں؟
جمعے کے دو خطبوں کے درمیان جو امام وقفہ لیتا ہے، کھڑے ہو کے خطبہ دیتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر دوبارہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتا ہے، یہ جو درمیان کا وقت ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا نہایت اہم وقت ہوتا ہے۔ اس وقت جو دعا کی جائے، اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اس کی قبولیت کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس گھڑی میں جو دعا کی جائے قبول ہو جاتی ہے۔ اور علماء نے، وہ کون سی گھڑی ہے اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، لیکن دو قول بڑے قوی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو دو خطبوں کے درمیان کا وقت ہے، یہ ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسرا علماء نے فرمایا کہ غروب آفتاب سے پہلے، عصر کی نماز کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے کا جو وقت ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ دو خطبوں کے درمیان میں جو دعا ہے، یہ دعا زبان سے نہیں پڑھنی بلکہ یہ دل میں مانگنی ہے۔ تو لہذا اس وقت امام جب بیٹھے گا تو اپنے دل میں دعا مانگ لیں، دل میں مانگ لیں کہ یا اللہ میرے رزق کا رزق میں برکت دے دے، میرا مریض فلاں مریض شفا یاب کر دے، مجھے یا اللہ یہ عطا فرما دے۔ تو یہ جو بھی دعا مانگی ہے دل میں مانگی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہیں ہے نا کہ زبان سے مانگے یا دل سے مانگے، اللہ تعالیٰ تو زبان کی بھی سنتا ہے دل کی بھی سنتا ہے۔ تو حکم شرعی یہ ہے کہ خطبے میں خاموش رہا جائے۔ تو لہذا دو خطبوں کے درمیان جو دعا مانگی جائے، اس میں نہ تو ہاتھ اٹھائیں گے اور نہ زبان سے دعا مانگیں گے، جیسے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں ویسے ہی رہیں گے اور دل میں دعا مانگی جائے گی۔
عمران جٹ پوچھ رہے ہیں کہ گولی سے کیا ہوا شکار کیا حلال ہے؟
گولی سے جو شکار کیا اور اسی گولی کی وجہ سے جانور مر گیا، اسے ذبح نہیں کیا پھر، تو یہ جو شکار ہے یہ حلال نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ جو جانور تم پر حرام کیے گئے ہیں، اس میں ایک جانور ہے الموقوذہ۔ الموقوذہ وہ ہے کہ جو چوٹ لگنے سے مرا۔ تو یہ جو چھرا لگتا ہے، جو گولی لگتی ہے، یہ چوٹ کی وجہ سے اس کو پھاڑتے ہوئے گزر جاتی ہے، یہ دھاری دار چیز نہیں ہے جیسے چھری ہے یا جیسے تیر ہے۔ تیر سے شکار کریں گے تو تیر جو ہے اس کو چیرتا ہوا گزرتا ہے، لیکن جو گولی ہے یہ اپنی قوت کی وجہ سے اور اپنے بارود کی وجہ سے اس کو پھاڑ کے گزرتی ہے، تو یہ موقوزہ میں آتا ہے۔ اگر اسی سے مرا ہے تو پھر حرام ہے، پھر حلال نہیں ہے۔ ہاں گرا اور زندہ تھا تو اب فوراً تکبیر پڑھ کے اسے ذبح کر لیا باقاعدہ تو اب حلال ہو سکتا ہے.
بغیر وضو کے اذان دی تو اس کا کیا حکم ہے؟
بغیر وضو کے اذان دی تو اذان ہو جائے گی, لیکن یہ ترک ادب ہے, لیکن بہرحال اذان ہو جائے گی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو شرعی مسائل بیان کیے ہیں جس میں اگر کوئی خطا ہوئی ہو تو اسے معاف فرما, اور ان مسائل کو یاد رکھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شریعت کی پابندی عطا فرما, اتباع سنت کا جذبہ عطا فرما. اے اللہ اپنی زندگی میں حلال و حرام کی تمیز رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما. اے اللہ جتنے لوگ بھی ہمیں سن رہے تھے اور جو بعد میں سنیں گے, اے اللہ عز و جل ان سب کی بے حساب بخشش فرما. اے اللہ ان سب کو دین و دنیا کی ڈھیروں بھلائیاں عطا فرما. اے اللہ ان سب کی مشکلیں پریشانیاں آزمائشیں دور فرما. اے اللہ ہم سب کو ایمان و عافیت اور صحت و سلامتی کی لمبی زندگی عطا فرما, ہمارے بیماروں کو شفا یا فرما. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, برحمتک یا ارحم الراحمین.
علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا, علم نافع ملے اذبا علماء. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا.